Namo Buddhaya. Jai Bhim.
Jai Bhim.
So, we've been looking at the new mind that we need to give to the world.
तो हम उस नए मन की ओर देख रहे थे जो मन हमें दुनिया को देना है.
It's the new mind that the world needs if it is to be based on true justice.
और अगर सच्चे न्याय पर आधारित समाज होना है तो उसके लिए इस नए मन की आवश्यकता है.
And we've talked of that new mind as the mind of the Bodhisattva.
और इस नए मन के विषय में हमने इस तरह बात की थी कि ये बोधिसत्व का मन है.
And we've seen that in essence the Bodhisattva mind is the selfless mind.
और हमने ये भी देखा कि सार रूप में बोधिसत्व का मन ऐसा मन होता है जो आत्म से रहित होता है, आत्मस्वार्थ से रहित होता है.
And therefore the mind that is full of compassion.
और इसलिए वो ऐसा मन होता है कि जो करुणा से पूरी तरह भरा होता है.
And we then looked at what is the self that has to be transcended.
और फिर हमने इस और भी देखा था कि फिर वो मैं या आत्म क्या है जिसके परे हमें जाना है.
And we've seen it especially in action in terms of greed, hatred and delusion.
और फिर तृष्णा, अज्ञान और द्वेष, इन तीनों के संदर्भ में हमने इसे देखा था, लोभ, द्वेष और मोह, अज्ञान के.
So Baba Sahib talks of reform of the mind of the individual and of the world.
तो बाबा साहब इस तरह बात करते हैं कि व्यक्ति के मन के परिवर्तन के विषय में और पूरे विश्व के मन के परिवर्तन के विषय में.
And this was the essence of his whole Dhamma revolution.
और उनकी पूरी धम्म क्रांति का यही जो है वो सार था.
The reform of the mind.
मन का परिवर्तन.
The whole way in which we think and see things.
वो सारी प्रक्रिया में बदलाव के जिस प्रक्रिया के तहत हम चीजों को देखते हैं.
So it moves, it's a movement from a mind that is simply selfish to a mind that is selfless.
तो ये एक प्रकार से स्थित्यांतरण है उस मन से कि जो पूरी तरह स्वार्थ से भरा है उस मन तक जो स्वार्थ से रहित है.
So I hope you've got some grasp of that, what that really means.
तो मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी बहुत समझ या थोड़ी बहुत पकड़ आपको आ गई होगी कि इसका अर्थ क्या है.
Of course, we always need to deepen our understanding, but let's say for the time being, we've got some idea of this movement.
तो निश्चित ही हमारी समझ को हमें हमेशा गहरा करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि अभी के लिए हमें थोड़ी उसकी कल्पना आ गई है.
So the big question is now, how?
तो अब बड़ा सवाल ये हमारे सामने उपस्थित हो जाता है कि किस तरह किया जाए.
In brief, you could say it is through training the mind.
तो संक्षेप में आप ऐसा कह सकते हैं कि मन को प्रशिक्षित करने के माध्यम से हम ये कर सकते हैं.
And this is in the end what the Buddha Dhamma offers is a way of training the mind.
और बौद्ध धर्म अंत में आपको यही देता है, यही प्रदान करता है कि आपको वो एक मार्ग प्रदान करता है, रास्ता देता है अपने मन को प्रशिक्षित करने का.
So you remember Baba Sahib said that, you know, in saying that a democratic constitution wasn't enough, he made a very interesting statement.
और आपको ये भी पता है कि बाबा साहब ने एक बहुत ही रोचक ऐसा वक्तव्य किया और उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक प्रजातांत्रिक संविधान ही पर्याप्त नहीं है.
He said that independence from the British wasn't enough.
और उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना ये भी पर्याप्त नहीं था.
Of course it was necessary, but it wasn't enough.
तो ये आवश्यक था लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था.
He said there's no freedom unless the mind is trained for freedom.
तो उन्होंने कहा कि जब तक मन को स्वतंत्रता का प्रशिक्षण नहीं मिलता है तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है.
So the training we're talking about is the training in freedom, you could say.
तो जिस प्रशिक्षण की हम बात कर रहे हैं आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्वतंत्रता का प्रशिक्षण है.
It's a training in the bodhisattva mind.
और एक बोधिसत्व के मन को प्राप्त करने का ये प्रशिक्षण है.
So this training has two main aspects.
तो इस प्रशिक्षण के दो मुख्य पहलू हैं.
And this morning I'm going to talk about the one that we're most immediately needing to put into practice.
और पहला जो मैं बात करने वाला हूँ वो ऐसा है कि जिसे हमने तुरंत ही आचरण में लाने की आवश्यकता है.
And what this essentially is the moment by moment changing the mind.
और ये वो है कि हर क्षण के बाद जो क्षण आता है, क्षण दर क्षण अपने मन में परिवर्तन लाना.
And well, this is what we can be doing. We are doing even now.
और यही है जो हमें करना है और हम इस क्षण भी ये कर रहे हैं.
That's what we were doing with the mindfulness of the breathing and the maitri bhavana.
और आनापान सति और मैत्री भावना के ध्यान में हम यही कर रहे थे.
So we need to go into that side of mind training much more deeply.
तो मन के प्रशिक्षण का वो जो भाग है उसमें और भी गहराई से प्रवेश करने की हमें आवश्यकता है.
There's another side of mind training which we'll look at this afternoon.
तो मन के प्रशिक्षण का दूसरा भी एक पहलू है जिसकी ओर हम दोपहर में देखेंगे.
You could say the first sort is changing the habits of the mind.
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि पहला भाग वो है कि आप अपने मन की आदतों में परिवर्तन लाते हैं.
The second kind of training is much more radical.
और दूसरा जो है वो बहुत ज्यादा ठोस है, मतलब ठोस रूप में आपको कुछ करना है.
It's really getting to the roots of the problem.
और वो इस तरह से कि आपको समस्याओं के वाकई जड़ों तक जाना है.
And what it essentially consists in is realizing that there is no fixed self.
और उसमें आपको वाकई में इस बात को देखना और अनुभव करना होता है कि वास्तव में ऐसा कोई स्व या आत्म या मैं नहीं है.
So there's these two main aspects to the mind training.
तो मन के प्रशिक्षण के ये दो पहलू हैं.
And if we're serious about reforming India, reforming our own environment and reforming ourselves, we need to engage with these trainings.
और अगर हम वाकई भारत में परिवर्तन लाना चाहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के परिसर में परिवर्तन लाना चाहते हैं, स्वयं में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों बातों को देखना होगा.
And we need to be helping others to undergo this training.
और इसी प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों की भी हमें सहायता करनी होगी.
There's a third kind of training which I might come on to later.
और एक तीसरे प्रकार का प्रशिक्षण है जिसके विषय में शायद मैं बाद में बात करूंगा.
And that's much more definitely training in the bodhisattva mind.
और वो जो है निश्चित तौर पे आपको बोधिसत्व का मन प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित करता है.
So this morning our task is to look at this moment by moment changing of the mind.
तो आज के सवेरे हमारा कार्य ये है कि हम इस ओर देखें कि क्षण दर क्षण जो मन परिवर्तित होता है उसकी ओर देखना.
So it works in a way that's the opposite of greed, hatred and delusion.
तो वो इस तरह से कार्य करता है जो लोभ द्वेष और अज्ञान के एकदम विपरीत होता है.
And so even though there's still attachment to self, there's a sort of an open ness to the rest of the world.
तो उसमें भले ही मैं के साथ किसी हद तक आपकी आसक्ति होती है, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो दुनिया होती है उसके प्रति भी आप में खुलापन और ग्रहणशीलता होती है.
So first of all, let's look at those opposites.
तो पहले हम ये दो विपरीत बातें क्या है इनकी ओर देखते हैं.
So let's start with lobh, greed.
तो पहले हम लोभ से शुरुआत करेंगे.
The tendency of lobh is to bring everything to me.
तो लोभ का ये स्वभाव होता है, उसकी ये प्रकृति होती है कि सारी जो चीजें हैं वो समेट के अपने पास लाना चाहता है.
And you remember from the discussion yesterday that you're doing that because in doing it you believe you're making yourself more secure and more happy.
और कल की अक्सर चर्चा याद होगी तो आपने देखा था उसमें कि हम ऐसा सारी चीजों को समेटना इसलिए चाहते हैं कि अपना जो मैं का भाव होता है, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो मैं जो है सुरक्षित होता है और संतुष्ट होता है.
Of course, we soon find that we're not.
और फिर जल्दी हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं होता.
So we cling more.
और फिर हम और भी पाने की किसी चीज को चाह करते हैं.
That's just what's happening with a drug addict, huh?
तो वो जो ड्रग का एडिक्शन होता है उसके साथ भी ऐसा ही होता है.
If you inject some heroin, for instance, you get a feeling of great pleasure.
तो थोड़ी बहुत अगर कभी आप हेरोइन ले लेते हैं तो आपको बहुत ही आनंद उसमें आता है.
When the drug has left your system, you feel worse.
और जब उस दवा का असर आपके शरीर से जाने लगता है तो आपको बहुत बुरा महसूस होता है.
So you need more.
और फिर आपको और ज्यादा की आवश्यकता होती
है. You have to have a bigger dose.
और इस बार आपको और भी बड़े डोज की आवश्यकता होती है.
Many drug addicts die because of that in the end. Yeah?
और बहुत से जो व्यसनाधीन हो जाते हैं लोग उसकी वजह से अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है.
So lobe is a kind is addiction, you could say.
तो एक तरह से आप लोग को ऐसे कह सकते हो कि वो एक प्रकार का एडिक्शन है, लत है.
So it's trying to have things which you make part of yourself because you feel that you will be more secure, more happy.
तो एक आदत आप चीजों को अपनी पहचान में समाविष्ट करना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको और ज्यादा सुखी बना देगी, और ज्यादा संतुष्ट बना देगी.
And of course it happens without you really understanding the real nature of happiness and what produces happiness.
और सुख क्या है, उसकी सही प्रकृति क्या है, कौन सी चीजें सुख निर्माण करती है, इसको जाने भी ना आप ये सब करते रहते हो.
So what's the opposite of craving?
तो फिर लोग का जो है, लोग की जो विपरीत बात है, विरुद्ध बात है, वो क्या है?
If you like, craving is this movement.
तो अगर आप सोचते हो कि जो लोभ है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार उसको जता सकते
हैं. Its opposite is this movement.
तो फिर उसकी विपरीत अगर कोई बात है या कोई गतिविधि है तो वो इस प्रकार की.
It's dana.
तो वो दान है.
It's openness.
और वो खुलापन है.
It's a generosity of spirit.
और वो आपके चैतन्य का दातृत्व है.
When you see somebody needs help, you give help.
जब आप देखते हैं किसी को मदद की आवश्यकता है तो आप मदद देते हैं.
If you've got something, well, you give some of it at least to somebody else.
अगर आपके पास कोई चीज होती है तो आप उसमें से कुछ उसका हिस्सा जो है किसी और को दे देते हैं.
So you're training yourself in this case to see that not relate everything back to yourself.
तो यहाँ पर आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि हर चीज का संबंध जो है, हर चीज आप खुद से ही जोड़कर नहीं देखते हैं. आप देखते हैं कि औरों का भी हिस्सा.
So the training opposite of lobe is dan.
तो फिर लोभ के विरुद्ध जो प्रशिक्षण है वो है दान का प्रशिक्षण.
You know, you've got what's it? What's the fourth precept? The second musavada. Thank you. Adinadana is the second precept. Adinadana veremini sikaptam samadhiyami. That's the training principle of not taking what is not given.
तो दूसरा जो शील है वो आपको पता है कि उसमें आपको आप इस बात का प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं कि जो आपको दिया नहीं गया है उससे आपको लेना नहीं है.
And the positive precept that corresponds to that is mukta hasta se dan karke mai.
अपने
शरीर को शुद्ध करता हूँ.
उसका जो विधायक शील है उसके विपरीत जो है दूसरे शील का विधायक शील वो ऐसा है कि मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ.
सो यू स्टॉप ग्रास्पिंग एंड यू स्टार्ट गिविंग.
तो आप चीजों को जकड़ कर रखना, अपने तक रखना बंद कर देते हैं और आप देना शुरू कर देते हैं.
दिस इज नॉट जस्ट नॉट एन एक्शन ऑफ गिविंग मनी और गुड्स.
और ये कोई पैसा या कोई चीजें देने की ही कृति नहीं होती.
इट्स अ जेनरोसिटी ऑफ माइंड.
तो ये आपके मन का दातृत्व होता है.
यू सी अदर पीपल अप्रिशिएटिवली.
और दूसरे लोगों की तरफ आप देखते हो तो आप में सराहना का भाव होता है. आप उनको सराहते हो.
यू एक्सेप्ट देम.
आप उनको स्वीकृत करते हो.
इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट स्ट्राइक्स मी अबाउट अ हायरार्किकल सोसाइटी विद इट्स क्लास और कास्ट और रेस. It's so ungenerous.
तो एक चीज जो मुझे प्रकर्ष से मेरे ध्यान में आती है जहाँ पर भी वर्गीकरण की व्यवस्था होती है कि एक वर्ग है या एक जाति है या कुछ भी है तो उनमें एक दूसरे को स्वीकृत करने की भावना नहीं होती है, सराहना की भावना नहीं होती.
No,
मतलब दातृत्व नहीं है उनमें.
No sense of openness to the people who are out of your category.
और आपके वर्ग के बाहर जो लोग हैं उन लोगों के प्रति आप में जो खुलापन नहीं होता.
And yesterday I read that there's a big uprise of this in Britain, of this ungenerosity.
कल ही मैंने देखा था कि इस प्रकार का दातृत्व न होने की वजह से एक बहुत ही अलग प्रकार की क्रांति जो है वो ब्रिटेन में हुई.
Recently Britain, or at least a majority, a small majority of people in Britain, voted to leave the European Union.
तो वहाँ के लोगों के कुछ भाग में मतलब अधिकतर लोगों ने इस के लिए मत डाला अपना कि वो लीव द ब्रिटेन
यूरोपियन यूनियन,
तो यूरोपियन यूनियन जो है उसमें से बाहर जाने के पक्ष में उन्होंने अपना मत डाला.
एंड व्हाट द पुलिस आर रिपोर्टिंग इज देयर बीन अ लॉट मोर अटैक्स ऑन फॉरेनर्स सिंस देन.
और उन्होंने पुलिस ने ऐसा बताया है कि ऐसा होने के बाद जो वहां पर विदेशी आ रहे थे उनके ऊपर हमला होने की जो तादाद है वो बढ़ गई थी.
सो इट्स माइन, गो अवे.
तो इस तरह का भाव आ गया था कि मेरा है, आपका नहीं, आप चले जाओ.
सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस आर अनजेनरस.
तो ये सारे ही प्रकार के जो पूर्व धारणाएं होती है मन की उसमें दातृत्व नहीं होता है.
And what we want is a society which people are generous to each other.
और हम ऐसा समाज चाहते हैं कि जहाँ पर लोगों में एक दूसरे के लिए बहुत ही देने की भावना हो, दातृत्व की भावना हो.
Welcoming, sharing and being open.
तो लोग एक दूसरे का स्वागत करें, अपनी चीजें एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के प्रति खुले हो, ग्रहणशील हो.
So we need to train ourselves in that.
तो हमें अपने आप को उसमें प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है.
So we move from selfish craving to generosity.
तो आत्मस्वार्थ से भरी हमारी जो आसक्ति होती है वहां से दातृत्व की ओर हमें बढ़ना होता है.
Then of course we've got dvesh, hatred.
और फिर उसके बाद हमारे पास है द्वेष.
So what's the opposite of द्वेष?
तो द्वेष का विरुद्ध क्या है, द्वेष के विपरीत क्या होता है?
Very obvious, isn't it? It's maitri.
तो बहुत ही स्पष्ट है कि मैत्री होती है.
It's an attitude of well wishing to others.
तो दूसरे के भलाई की कामना करने की ये वृत्ति होती है.
The English word well wishing is rather good.
और इंग्लिश में जो कहा जाता है कि वेल विशिंग वो शब्द ज्यादा अच्छा है.
बिकॉज इट मीन्स यू विश यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू बी वेल.
क्योंकि इसका अर्थ होता है कि आप वो इच्छा करते हैं, आप वो कामना करते हैं कि वो दूसरा जो व्यक्ति है वो अच्छा हो.
एंड इन अ वे इट्स द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ मेटा.
और एक तरह से ये मेत्ता शब्द का बहुत ही अच्छा ऐसा अनुवाद है.
यू विश that other people are happy and well.
तो आप ये कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो सुखी हो और वो अच्छे हो.
In hatred, of course, you're wanting them to be harmed.
और जब द्वेष होता है तो निश्चित ही आपके मन में ऐसा होता है कि उनका कुछ तो बुरा हो जाए, नुकसान हो जाए.
You could say in a way you just want them out.
और एक तरह से आप ऐसा चाहते हो कि वो आपके जीवन से पूरी तरह से बाहर हो.
You want all those foreigners out of Britain because then everybody in Britain will be happy. That's what you think.
तो ब्रिटेन में ये जो भी विदेशी लोग हैं आप उन सबको बाहर निकाल देना चाहते हो क्योंकि तभी जाकर आपको लगता है कि ब्रिटेन जो है वो अच्छा हो जाएगा.
That's the way you think.
और इस तरह से आपकी सोच होती है, वैसा आप सोचते हैं.
So hatred is the repelling and even harming of others because you believe that they threaten your happiness.
तो द्वेष जो होता है वो दूसरों को दूर धकेलना होता है या उन्हें नुकसान पहुंचना होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशी को उससे खतरा है.
And metta reverses that.
और मेता जो है वो पूरा उसका विरुद्ध होता है, उसका परिणाम विरुद्ध होता है.
It accepts others and it wishes them the best.
तो मेता जो है सबको स्वीकृत करती है और उनके जो है अच्छाई के लिए सोचती है, उनके अच्छाई की इच्छा करती है, कामना करती है.
So obviously if most people had that sort of feeling, what a wonderful society we'd have.
तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि बहुत से लोगों के अंदर अगर इसी तरह की भावना होगी तो ये समाज कितना सुंदर होगा.
And Baba Sahib, you remember, said that fraternity in the end means metta, maitri.
और बाबा साहब ने ये कहा है कि अंततः बंधुता का अंततः मतलब ही यही है कि मेत्ता, मैत्री.
So yes, we're trying to convert that द्वेष into metta.
इसलिए हम इस द्वेष को मेत्ता में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं.
The third of the three tactics by which the self protects itself is moha. Ignorance.
तो वो जो तीसरा उपाय होता है, तीसरा कौशल होता है कि जिसके माध्यम से आत्म जो है मैं जो है स्वयं की सुरक्षा करता है वो होता है अज्ञान या मोह
विच इज जस्ट नॉट लुकिंग एट एनीथिंग दैट्स इनकन्वीनियंट.
तो ये ऐसा होता है कि जो भी आपके लिए असुविधा निर्माण करता है जो भी आपके लिए असुविधाजनक होता है उसको अनदेखा कर देना.
फॉर इंस्टेंस देयर्स अ वेरी वेल नोन फिल्म मेड बाय अल गोर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सम इयर्स अगो.
तो उदाहरण के तौर पे अमेरिका का प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाला अल गोर ये जो प्रतिवादी था उसका एक उसने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है.
It's called An Inconvenient Truth.
और उसकी जो पिक्चर थी फिल्म थी उसका नाम था Inconvenient Truth.
And it's about the threat to our environment by our own pollution.
और वो फिल्म का विषय ये था कि हमारे अपने ही प्रदूषण के वजह से हमारे पर्यावरण को निर्माण होने वाला खतरा.
And he's saying it's an inconvenient truth that actually we are destroying our planet.
तो वो कहता है कि ये एक inconvenient truth है मतलब आपको असुविधापूर्ण लगने वाला ऐसा एक ये सत्य है कि हम खुद ही हमारे पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित कर रहे हैं नष्ट कर रहे हैं.
So we ignore it.
और इसलिए हम उसको अनदेखा कर देते हैं नजरअंदाज कर देते
हैं. And we carry on polluting.
और हम उसको प्रदूषित करना जारी रखते हैं.
And I know that for instance many people in India will say no there's no problem of caste.
और मुझे पता है कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलेंगे नहीं यहाँ जाति की कोई समस्या नहीं है.
It's just something the British made.
तो ये ऐसी कुछ बात है जो ब्रिटिश लोगों ने अपने मन से बनाई है मनगढ़ंत है.
I really read that in an article by an ex Supreme Court justice in I think it was the Times of India. Yeah.
तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने न्यायाधीश ने लिखा हुआ मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा गया था.
It's an inconvenient truth.
तो ये जो एक सच्चाई है वो आपको संकट में डालने वाली है आपके लिए असुविधापूर्ण है.
We don't want to recognize it because it makes our lives uncomfortable and we'd have to change. We'd have to lose something.
तो हम उसकी ओर देखना नहीं चाहते उसे स्वीकृत नहीं करना चाहते क्योंकि वो हमारे जीवन में असंतोष निर्माण करता है और फिर हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ती है उसको बदलने की.
And I read again just very recently an article by or referring to some work by Daniel Kahneman who's a Nobel Prize winning psychologist and economist.
तो हाल ही में मैंने और एक लेख पढ़ा है डेनियल कार्नमल का जो एक अर्थतज्ञ भी है और एक मनोवैज्ञानिक भी है उनके द्वारा लिखा हुआ और नोबेल पारितोषिक के वो विजेता भी है.
सो ही वाज लुकिंग एट व्हाई इट इज दैट पीपल बिलीव सच नॉनसेंस इन द पेपर्स.
तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि ऐसा क्यों है कि अखबारों में जो है जो भी आड़ी टेढ़ी बातें बेमतलब की बातें छपती है उस पर लोग यकीन करते हैं.
I can't immediately think of an example, but I know even in India, quite recently, I heard something that many people believe something which is just obviously not true.
तो मुझे ऐसा कोई उदाहरण याद नहीं आ रहा है लेकिन भारत में भी ऐसा होता है कि बहुत आराम से लोग ऐसे किसी भी बात पे यकीन कर लेते हैं जो उनको बहुत स्पष्ट रूप से मालूम होता है कि ये सच नहीं है.
And many politicians use lies to get people's votes.
और बहुत सारे जो राजनेता हैं वो बहुत इसी तरह के झूठ का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोगों के वोट पा सके.
And the strange thing is, often those lies are so obviously lies, but people accept them.
और विचित्र बात ये है कि बहुत सारे ये जो झूठ है पता होता है कि झूठ है लेकिन फिर भी लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं.
And what Kahneman said was that there's a mechanism, a mental mechanism to accept something that fits in with your views.
और कार्नमन ये कहता है कि आपके मन में ऐसे एक यंत्रणा होती है और वो यंत्रणा ऐसा करती है कि जो भी आपको लगता है कि आपके अनुकूल है आप उसे अपना लेते हो.
So for instance, let's say that there's a belief that caste is basically gone in India.
तो उदाहरण के तौर पे हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो ऐसा विश्वास है कि जाति जो है अब भारत से जा चुकी है.
Well, it suits you to believe that.
और इसको मान लेना आपके अनुकूल होता है.
Because then you can continue with your own life and you don't have to bother about the millions of people who suffer.
क्योंकि फिर जो है आप अपना जीवन जो है सहजता से आराम से गुजार सकते हो और फिर अन्य लोगों की चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं होती.
Basically the mind does not want to do any unnecessary work.
तो मूलतः जो भी गैर जरूरी काम है वो गैर जरूरी काम ना करने की मन की प्रवृत्ति होती है.
Because if I accept it's not true, then I've got to revise everything.
क्योंकि अगर फिर मैं ये मानता हूँ कि नहीं ये सच नहीं है तो मुझे हर चीज में फेर बदलाव करने पड़ते हैं.
I've got to look around me with different eyes.
और फिर अलग आंखों से मुझे अपने आसपास देखना पड़ता है.
I've got to behave in a different way.
और फिर मुझे अलग प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है.
So the Kahneman called it the belief in what gives least effort.
तो कार्नमैन इसे कहते हैं कि ऐसी चीजों में विश्वास करना कि जिसके लिए बहुत कम प्रयासों की आवश्यकता होती है.
So we just continue to believe what is comfortable for us.
तो हम उन्हीं बातों में विश्वास अपना बनाए रखते हैं, करना चालू रखते हैं कि जो हमारे लिए सुविधाजनक होती है.
And there's a very, very common phenomenon, and we ourselves do it.
तो ये बहुत ही सामान्य ऐसी बात होती है और हम अक्सर इसे करते रहते हैं.
And it's moha.
और ये अज्ञान है.
This strong tendency just to ignore inconvenient truths.
तो हमारे अंदर बहुत सशक्त ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जो भी सत्य हमें असुविधाजनक लगते हैं उनको हम अनदेखा करते हैं, नजरअंदाज करते हैं.
And we've got many, many ways of doing it.
और ऐसा करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं.
We believe many things that we've never checked out.
तो हम बहुत सारी ऐसी बातों पे यकीन कर लेते हैं कि जिनकी हमने कभी जांच भी नहीं की होती है.
Because they make us feel comfortable, we can stay as we are.
क्योंकि वो हमें आरामदायक महसूस करते हैं, कराते हैं और हम जैसे हैं वैसे रह सकते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं.
Of course, the big one, as I mentioned, is death.
और एक बड़ी बात है जो मैंने जिसके विषय में बात की थी और वो है मृत्यु.
इट्स एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ.
तो वो आपको असुविधा निर्माण करने वाला एक सत्य है.
यू नो, हियर आई एम अलाइव, आई लाइक बीइंग अलाइव.
तो यहाँ पे मैं हूँ, जीवित हूँ और जीवित रहना, जिंदा रहना मुझे पसंद है.
एंड मे बी व्हाइल आई एम अलाइव आई विल गेट एवरीथिंग आई वांट एंड बी रियली हैप्पी एंड दैट विल बी इट.
तो जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे जिन जिन चीजों की जरूरत है वो मुझे मिलेगी और मैं आराम से रहूंगा.
I'll have the perfect wife, the perfect children, the perfect house.
तो एकदम अच्छी मेरे पास बीवी होगी, अच्छे से बच्चे होंगे और सब कुछ अच्छा होगा.
But death challenges all our aspirations, our worldly aspirations.
तो इस दुनिया से ताल्लुक रहने वाली हमारी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं हैं मृत्यु उनको चुनौती देती है.
So it's an inconvenient truth.
और इसलिए वो हमारे लिए असुविधाजनक होती है.
Forget about it.
तो उसके बारे में भूल जाओ.
And in Buddhism we put a lot of stress on taking death in.
और बौद्ध धर्म में हम बहुत ज्यादा जोर इस बात पे देते हैं कि आप मृत्यु का स्वीकार कर सको.
So yes, we got a clear idea, I hope, of what moha means, ignorance means.
तो मुझे लगता है कि हमें इस बात की स्पष्ट कल्पना आ गई है कि मोह या अज्ञान का क्या अर्थ होता है.
And I think this way of looking at it as ignoring the inconvenient truth is very clear.
और इस तरह से जब हम उसके और देखते हैं कि जो भी सत्य हमारे लिए असुविधाजनक है उसके और अनदेखा कर दिया जाए, इस प्रकार से अगर उसके और देखते हैं तो वो ज्यादा स्पष्ट होता है.
So what's the opposite?
तो फिर इसका विरुद्ध क्या है?
What is the bodhisattva side of that?
तो इसका जो बोधिसत्व का जो पहलू है वो क्या है?
Well, in the basic dhamma, we simply say smriti.
तो जो हमारा मूल धम्म है उसमें हम उसे स्मृति कहते हैं.
इट्स अवेयरनेस.
और ये जागृति है.
यू कुड इवन से इट्स सॉर्ट ऑफ ट्रूथ.
और या इसे आप सत्य भी कह सकते
हैं. इट्स सीइंग द ट्रूथ, सीइंग थिंग्स एज दे आर.
और इसका अर्थ होता है कि सत्य को देखना या चीजों को वैसे देखना जैसे वो है.
इग्नोरेंस इज रिफ्यूजल टू सी थिंग्स एज दे आर एंड अ डिसीजन टू सी देम हाउ दे आरंट.
तो अज्ञान ये होता है कि चीजें जिस स्वरूप में नहीं है उस स्वरूप में देखना.
So, you know, for instance, you hear some piece of news about some social fact.
तो उदाहरण के तौर पे आप किसी सामाजिक तथ्य के बारे में कोई खबर सुनते हैं.
Caste is no longer a problem in India.
तो अब जो है जाति भारत में कोई समस्या नहीं है.
There's poverty but not caste.
तो गरीबी है लेकिन जाति नहीं.
I've heard this said by a quite high-ranking Indian official.
तो बहुत ही उच्च जो भारतीय अधिकारी है उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी है.
So you don't just say, oh, okay, fine, good.
तो आप केवल इतना नहीं कहते कि हाँ ठीक है चलो बेहतर है.
Aram, just carry on.
तो जो चल रहा है बस चलने दो.
You say, well, on what basis is that being said?
तो आप कहते हैं कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं.
What are the facts behind it?
और इसके पीछे के तथ्य क्या हैं?
What evidence is there for it?
और आपके इस बात के लिए क्या सबूत हैं?
What evidence is there against it?
या आपके इस बात के विरुद्ध में क्या सबूत हैं?
So you're very careful about just accepting what you hear because it suits you.
तो केवल आपके लिए वो सुविधाजनक है इसलिए आप सिर्फ चीजों को वैसे ही नहीं मानते हैं उसके बारे में आप सावधानी बरतते हैं.
You're much more careful about truth.
और सत्य के विषय में आप अधिक ज्यादा सावधान होते हैं.
And you have, if you like, a sort of scientific approach.
और एक तरह से आपका उनकी ओर देखने का दृष्टिकोण जो होता है वो वैज्ञानिक होता है.
What is the basis for this statement?
तो ये जो आपका वक्तव्य है इस वक्तव्य का आधार क्या है?
But deeper and much more immediate is simply the act of being aware.
लेकिन गहराई में आपके अंदर उस चीज के प्रति सजग होने की एक कृति होती है.
A lot of the time we live in a sort of artificial idea of the world.
तो बहुत सारा समय हम जो है दुनिया के विषय में हमारी जो एक कृत्रिम कल्पना होती है उस कृत्रिम कल्पना में जीते हैं.
But the bodhisattva sees what is there.
लेकिन बोधिसत्व वो देखता है जो वास्तव में होता है.
Whether it's pleasant or painful, he or she sees it.
तो भले ही वो बात सुखद हो या दुखद हो वो उसे देखता है उसके संपर्क में रहता है.
Accepts this is the way it is.
और वो इस बात को स्वीकृत करता है कि हाँ ये इसी तरह से है.
So the movement here is from a life based on ideas which are not true to a life which is based on truth.
तो यहाँ पर उन कल्पनाओं ऐसी कल्पनाएं जो सत्य नहीं है वहां से लेकर हमारा जो है सत्यांतरण होता है ऐसी दुनिया में कि जो सत्य है सत्य पर आधारित है.
इट्स अ लाइफ दैट्स बेस्ड नॉट ऑन अनमाइंडफुलनेस बट ऑन अवेयरनेस.
तो ये जीवन ऐसा होता है जो अजागृति पर आधारित नहीं होता है बल्कि जागृति पर आधारित होता है.
यस सो the transitions that we need to be undergoing.
तो ये वो स्थितांतरण है कि जिन स्थितांतरणों से हमें होकर गुजरना है.
And we're probably all of us somewhere along that the spectrum in each case.
और हर चीज का जो एक दायरा है उन दायरों के भीतर जो है हम कहीं पर हैं.
We're probably mostly pretty decent people.
हम सभी बहुत ही एक तरह से सभ्य ऐसे लोग हैं.
So we're not entirely caught up with greed, hatred and delusion.
तो हम पूरी तरह से जो है लोभ द्वेष और अज्ञान में जकड़े हुए नहीं हैं.
But we still need to make much more effort to develop Maitri, Dana and Smriti.
लेकिन निश्चित ही हम सबको मैत्री दान और स्मृति का विकास करने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है.
So in this kind of mind training, this aspect of mind training, we're working very specifically on the mental states that we have right now.
तो प्रशिक्षण का ये जो पहलू है इसमें बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से हम उस भाग पर कार्य कर रहे हैं या उन अवस्थाओं पे कार्य कर रहे होते हैं जो इस वक्त इस वर्तमान क्षण में हमारी होती है.
We're developing the mind that's trained for liberty, equality and fraternity.
तो हम ऐसे मन को निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं कि जो मन स्वतंत्रता समता और बंधुता पर आधारित है.
And it has to be done moment by moment by moment.
और इसे हर क्षण करते रहने की आवश्यकता है.
We need to be undoing old habits and building new ones.
तो पुरानी जो आदतें हैं उन्हें हमें छोड़ना होता है और नई आदतों का हमें निर्माण करना होता है.
Of course, the precepts are precisely a training in this way.
और निश्चित ही इस प्रकार के प्रशिक्षण को करने का शील जो है वो एक माध्यम है.
But we still need to get much more specific and exact.
लेकिन उसमें भी हमें बहुत ही ठोस रूप में उसमें कार्य करना होता है.
In each moment, a new mental state arises.
तो हर क्षण में एक नई मानसिक अवस्था जो है वो उत्पन्न होती है.
And each mental state is accompanied either by greed, hate and delusion or by Maitri, Dana and Smriti.
तो हर नई मानसिक अवस्था जो है या तो लोभ, द्वेष और अज्ञान से जुड़ी हुई होती है या फिर मैत्री, दान और प्रज्ञा से जुड़ी हुई होती है.
स्मृति
से जुड़ी होती है.
In the longer term, prajna, yeah. She's already wanting to be a bodhisattva. Moment by moment, this happens, huh?
तो हर क्षण ये होते रहता है.
It's as if every moment there's a crossroads.
तो हर क्षण में आपके पास जो है दो राहें होते हैं. हर क्षण आप दो राय पे खड़े होते हो.
I can go this way, I can go that way.
तो या तो मैं इधर जा सकता हूँ या तो मैं उधर जा सकता हूँ.
And so we need to be trying to choose, well, to train ourselves in the more skillful direction.
और हर वक्त हमें ये चुनाव करना होता है कि अधिक कुशल जो रास्ता है उस रास्ते के ऊपर जाने के प्रशिक्षण के लिए हमें चुनाव करना पड़ता.
That's what we're doing in meditation.
और यही हम ध्यान में कर रहे हैं.
In a certain sense, it's reasonably easy in meditation. In a certain sense.
तो एक तरह से देखा जाए तो ध्यान में ऐसा कर पाना बहुत आसान होता है.
Because, for instance, in the Maitri Vikas that we did this morning, you're deliberately intending to develop metta.
क्योंकि मैत्री विकास का जो हमने अभ्यास किया आज सवेरे वहां पर आप जानबूझकर मैत्री का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं.
So you're making a conscious decision to do that.
और एक प्रकार से जागृत आप निर्णय लेते हैं वो करने का.
It's much more difficult in the middle of it all.
तो लेकिन जब दुनिया के अंदर हम होते हैं हर तरफ चहल पहल होती है उस परिस्थिति में उस वातावरण में इसे कर पाना मुश्किल होता है.
You're at home, you're in your college, you're in your job.
आप घर में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, अपने नौकरी की जगह पर होते हो.
Things happen.
अब बहुत सारी चीजें होते रहती हैं.
And of course, before you know where you are, you've got lost in reaction.
और इससे पहले कि आपको पता चले कि आप कहाँ हो आप पाते हो कि आप किसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हो.
And that the world is very good at provoking our reactions.
और हमारी प्रतिक्रिया को उत्तेजना देने के लिए देने का काम करने के लिए दुनिया बहुत अच्छी है. उत्साहते रहती है हमको.
एंड ऑफ कोर्स वी वेरी इजीली जस्ट फॉलो द रिएक्शन.
और हम बहुत ही आसानी से जो है प्रतिक्रिया दे देते हैं.
Some people are very difficult to deal with.
कुछ लोगों के साथ तो बहुत मतलब उनसे निपटना बहुत मुश्किल होता है.
We won't name anybody.
तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे.
But there's always somebody, isn't there, who's difficult.
लेकिन हम हमेशा हमारे जीवन में ऐसा कोई होता है जो बहुत मुश्किल होता है.
I'm sure that when I say that everybody thinks of me, yes, him or her.
तो मैंने जब ये कहा सबके दिमाग में कोई ना कोई एक व्यक्ति आ गया होगा कि हाँ वो.
Especially at work or and so on.
तो अपने काम की जगह हो सकता है या और भी कहीं जहाँ आप जाते हैं.
What on earth do you do?
तो क्या मतलब दुनिया में ऐसी क्या बात है जो मैं कर सकता हूँ.
The world is just banging on your head all the time.
तो पूरी दुनिया जो है कुछ ना कुछ जो है आपके ऊपर फेंकते रहती है आपके सर पे दे मारती है.
How can you possibly change within that situation?
और ऐसी परिस्थितियों में आप किस प्रकार से अपने को बदल सकते हैं?
Well, brothers and sisters, I'm going to give you a very great secret which I learned from my teacher, Dhammachari Chandrashil.
तो भाई बहनों मैं आपको बहुत राज की बात बताने वाला हूँ जो मैं अपने गुरु धर्माचारी चंद्रशील से सीखी है.
We're kalyana mitras to each other.
तो हम एक दूसरे का कल्याण मित्र हैं.
And what Chandrashil would say, if you say to him, oh, it's so difficult, this person is being so awful, he's got something to say.
तो अगर आप उनके पास जाते हैं ऐसे कहते हो कि बाप रे चंद्रशील क्या ये व्यक्ति कितना मुश्किल है उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो वो कुछ कहते हैं उनके पास कहने के लिए होता है.
He is trying to help you.
तो कहते हैं वो तो आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा है.
He is your friend.
वो आपका मित्र है.
So you want to throttle him.
मैंने क्यों बताया गला दबोच उनका.
But what he says is actually true.
लेकिन वो जो भी कहते हैं वो वास्तव में सत्य है.
Because that difficult person is challenging you to change your mind.
क्योंकि वो जो मुश्किल व्यक्ति है वो एक तरह से आपको चुनौती दे रहा है कि आप अपने मन को बदलो, मन में परिवर्तन लाओ.
I made a joke of it, but it's actually really true.
तो मैंने इसका मजाक उड़ाया लेकिन ये वास्तव में जो है वो सच है.
It's actually difficulties that are that sort of force you, or rather give you the invitation to change.
तो ये मुश्किलात ही होते हैं जो आपको एक तरह से आप पे दबाव डालते हैं या आपको निमंत्रित करते हैं बदलने के लिए.
If you can really accept this, it's the key to mind training.
तो अगर आप वास्तव में इस बात को स्वीकृत कर सको तो ये जो है आपके मन के प्रशिक्षण की मुख्य बात होगी.
The key to mind training is seeing difficulties as opportunities for transformation.
तो मन के प्रशिक्षण का ये राज है कि जो भी मुश्किलात है उसको आप एक अवसर के रूप में देखो.
In the mind training tradition in Buddhism, it's said that mind training is carrying difficulties onto the path.
तो बौद्ध धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मन का प्रशिक्षण यानी ये वो होता है कि आप जो मुश्किलात है उन मुश्किलात को अपने साथ लेकर जो है मार्ग पर आगे बढ़ो.
दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. वी आर टॉकिंग अबाउट यूजिंग डिफिकल्टीज एज द ओकेजन फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन.
तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि जो भी मुश्किलें कठिनाई है उसका हम अवसर के रूप में इस्तेमाल करें बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए.
I'm very sorry. Please don't blame me for bringing this up, but this is what the tradition says.
तो इस बात को उठाने के लिए मुझे माफ कीजिए लेकिन ये परंपरा ऐसा कहती है.
It's very annoying when you're getting nicely annoyed with somebody to be told, oh, they're just trying to help you.
तो जब आपको वाकई में किसी पे ऊपर गुस्सा आता है और उस वक्त आपको कोई आपको ये बताता है कि वो तो आपकी मदद ही कर रहे हैं तो उस पे भी आपको गुस्सा आना बहुत ही अच्छी बात है.
You want to be able to dismiss them, to wipe them out, as it were, yeah?
और उस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि इनको ही यहाँ से खदेड़ दो, बाहर निकाल दो.
But this mind training tradition says no. This is your opportunity to be a bodhisattva.
लेकिन मन के प्रशिक्षण की ये जो प्रणाली है वो आपको ऐसे कहती है कि नहीं, ये आपका बोधिसत्व बनने का अवसर है.
It's true, Chaitan. It's true. He's wriggling. He's resisting. But it's absolutely true. You can make huge changes in yourself when you face up to difficulties.
तो जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होता है बदलने के लिए.
I'm just teasing him. I've seen a number of other people squirming too.
That's inconvenient truth for
me. Yes, that's right. So, yes, this is not, yeah, exactly. It's an inconvenient truth. So we need to recognize that if we are to change, we can't just wait until we're in a nice situation and everybody's nice to us and so forth. Why change?
तो अगर हम बदलना चाहते हैं और अगर ऐसा है कि नहीं सब कुछ अच्छा है, सब मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव कर रहे हैं, सब अच्छा अच्छा ही है, तो फिर बदलने की जरूरत क्या है?
So they're only being difficult to help you.
और वो सिर्फ आपके लिए मुश्किलें इसीलिए पैदा कर रहे हैं ताकि वो आपकी मदद कर सके कि आप बदलो.
Difficulties are coming to you just because they give you opportunities.
और मुश्किलें आपके सामने इसीलिए आती है कि वो आपके लिए अवसर निर्माण करें.
If you can really accept this, your mind training will deepen very, very rapidly.
और अगर आप वाकई में इस बात को स्वीकार कर सको तो आपका मन का प्रशिक्षण जो है बहुत ही जल्दी गहराई तक जा सकता है.
So why?
तो क्यों?
Well, of course, when something difficult happens, it threatens your ego.
तो जब कोई मुश्किल चीज हो जाती है तो वो आपके अहंकार को डरा देती है, स्व को डरा देती है.
Yes, it seems to diminish you.
और एक तरह से ऐसा लगता है कि वो आपको नष्ट कर देगी.
It takes away your happiness.
और वो आपका सुख आपसे छीन लेती है, दूर कर देती है.
It takes away your pleasure.
और वो आपका आनंद आपसे दूर कर देती है.
So, well, that is your self-attachment.
और वो जो है आपकी खुद से आपके अपने आत्म से आसक्ति होती है.
So what we say is that your reaction is the signal for you to work.
और फिर हम ये देखते हैं कि आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो आपके लिए एक इशारा होती है ये देखने के लिए कि कहाँ आपको कार्य करना है.
When you begin to feel the steam building up inside you and blow out of your ears, a reaction is happening.
तो जब आप देखते हैं कि आपके अंदर मतलब कुछ उबल रहा है, भाप बन के आपके सर तक पहुंच रहा है, तो और सब कुछ फूट पड़ने वाला है, फट पड़ने वाला है आप, तो वहाँ पे आपको देखने की आवश्यकता.
You literally feel these reactions in your body.
तो ये जो सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं या ये जो है आप अपने शरीर के अंदर अनुभव करते हैं.
When something appears to threaten you, well, your body prepares itself for flight or fight.
और अगर ऐसी कोई चीज होती है जो आपको डराती है उस वक्त आपका शरीर जो है अपने आप को तैयार करता है या तो उसका सामना करने के लिए या तो भाग जाने के लिए.
So that you know, for instance, you begin to feel the adrenaline rushing through your body, preparing your muscles to fight.
और उदाहरण के तौर पे जो एड्रेनल है वो आप अपने रगों में महसूस करते हो कि बस अब आप लड़ने के लिए तैयार हो.
Or, you know, to be quite blunt about it, when you're frightened, well, you feel your bowels loosening, yeah?
और बहुत ही खुलेपन से कहा जाए तो ऐसा है कि जब आपको भागना होता है उस परिस्थिति का सामना करने से तो आप अपने पेट के आप पूरा खाली महसूस करते हो.
That's to lighten the load so you can run away.
तो वो ऐसा इसलिए होता है कि आप जो अपना भार हल्का करते रहते हो ताकि आपको भागने में आसानी हो.
So emotions are felt in the body.
तो ये जो भी भावनाएं होती है ये शरीर के अंदर महसूस होती है.
When craving arises, your mouth begins to salivate.
तो जब तृष्णा होती है तो आपके मुंह में लार आने लगती है.
And you begin to feel sort of juice running in your system.
और एक प्रकार से जूस जो है द्रव जो है आपके गले में वहाँ पर बह रहा है ऐसा आपको महसूस होता है.
Other kinds of physical response.
और बहुत सारी अन्य प्रकार की भी शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है.
So if we're mindful, we notice these.
तो अगर हम सजग होते हैं हमें स्मृति होती है तो हम इन सारी चीजों को देख पाते हैं.
We see we're beginning to get angry.
तो हम देखते हैं कि हमें गुस्सा आने लगा है.
And we immediately think that person has given me an opportunity.
और हम तुरंत ये सोचते हैं कि उस व्यक्ति ने मुझे एक अवसर दिया है.
Because they're showing me my self-clinging.
क्योंकि वो मुझे मेरी आत्म आसक्ति दिखा रहे हैं.
So this is the first and really the most important thing.
तो ये सबसे पहली और बहुत जरूरी ऐसी बात है.
To become more and more aware of these reactions within you.
तो ये जो आपके अंदर प्रतिक्रियाएं होती है उसके विषय में अधिक जागरूक या सजग होना.
And to stop blaming the other person.
और दूसरे व्यक्ति को दोष देना बंद करना.
You know, you get the phrase, you get it in Hindi Marathi, he made me angry.
और आपको पता है एक वाक्य हमेशा हिंदी मराठी में हम इस्तेमाल करते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिलाया.
Yeah, same. He didn't make me angry.
तो वो आपको गुस्सा नहीं दिलाता है.
I got angry.
आप खुद गुस्सा हो जाते हैं.
I got angry. Well, on the basis of what he did, but it wasn't he who made me angry.
तो हाँ, उसने जो कुछ भी किया उसके आधार पर मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाता है, मैं खुद गुस्सा करता हूँ.
Because when you say he made me angry, you don't accept any responsibility yourself.
तो क्योंकि जब आप इस तरह से कहते हो कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया तो आप अपनी कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते.
So the beginning of this mind training is really accepting your own reactions.
तो इस मन के प्रशिक्षण की शुरुआत ऐसे होती है कि आपके स्वयं की प्रतिक्रियाओं को आप स्वीकार करते हो.
And using these reactions is the basis for practice.
और अपने अभ्यास के लिए इन प्रतिक्रियाओं का आप इस्तेमाल करते हो.
It's very convenient because you don't need any special equipment.
ये बहुत ही मतलब सुविधाजनक है क्योंकि इसके लिए आपको दूसरे किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती.
You don't need to spend a lot of money to learn how to react.
तो किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है उसको सीखने के लिए बहुत सारा पैसा गंवाने की जरूरत नहीं होती है.
It just happens.
वो बस हो जाता है.
And I can guarantee that everybody in this room, myself included, reacts.
और मैं ये गारंटी देता हूँ इस बात की कि हर कोई जो इस कमरे में उपस्थित है जिसमें मैं भी शामिल हूँ हम प्रतिक्रिया देते हैं.
If anybody's here who doesn't react, I salute you.
अगर यहाँ कोई है जो कभी कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है तो मैं उनको वंदन करता हूँ. हाँ, एक व्यक्ति है जिनको वंदन किया जा सकता.
Well, you could say that the Buddha is the embodiment of non-reaction.
तो आप एक तरह से कह सकते हो कि बुद्ध उस चीज का साकार स्वरूप है, मतलब ना प्रतिक्रिया ना देने वाली चीज का साकार स्वरूप.
You remember when somebody came to the Buddha and gave him a long list of insults.
तो आपको वो किस्सा याद होगा जहाँ पे एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और बहुत सारी लंबी उसके पास एक सूची होती है और सारी गालियाँ वो उनको दे देते हैं.
So the Buddha just sat there.
बुद्ध वहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं.
Completely calm.
पूरी तरह से शांत.
And then he said, "Tell me, if you give me a gift and I don't want it, who does it belong to?"
तो फिर बुद्ध ऐसे उनको कहते हैं कि एक बात बताओ मुझे कि अगर तुम मुझे एक तोहफा देते हो या कोई मुझे तोहफा देता है, अगर मैं वो तोहफा नहीं रखना चाहता अपने पास तो वो किसका रह जाएगा, किसके पास रह जाएगा.
So the person of course says, well, it belongs to the giver.
तो वो कहते हैं कि हाँ, निश्चित ही फिर जो तोहफा दे रहा है उसी के पास रह जाएगा, उसी का होगा.
If the recipient doesn't accept it, well, it still belongs to the giver.
तो अगर लेने वाला उसको नहीं ले रहा है तो वो तो देने वाले का ही हुआ ना.
So you can tell what the Buddha said.
तो फिर आप सोच सकते हैं कि बुद्ध ने उसे क्या बताया.
I don't accept your insults.
तो उन्हें कहते हैं कि मैं तुमने जो भी मुझे गालियां दी है उसे मैं स्वीकृत नहीं करता.
So that's the sort of non-reactivity he had.
तो उस प्रकार की मतलब उनका वो था प्रतिक्रिया ना देने वाली.
So yes, apart from that, the rest of us all have our reactions.
तो उस बात को छोड़ दे या उन्हें छोड़ दे तो बाकी हम जितने भी लोग हैं हम सबकी अपनी अपनी कोई प्रतिक्रिया होती
है. They're going on all the time.
और हर क्षण जो है वो हम करते रहते हैं प्रतिक्रिया.
I've been talking about we say in English, close to the bone.
तो मैं जो है बहुत ही अपने आई बोल रहा हूँ. मतलब मैं बहुत ही अपने दिल की मतलब करीबी जो बात होती है ना एकदम उसको बता रहा था, हड्डी के करीब की यानी उसके आगे कुछ नहीं अभी बताने के लिए.
These things touch us. We all are involved in everything we've talked about.
तो ये ऐसी बातें होती है जो हमारे दिल को छू लेती है, स्पर्श कर लेती है क्योंकि हम सभी उसमें शामिल होते हैं.
Probably your reactions have been coming and going a little bit even while I'm speaking.
और जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त भी जो है आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही है और जा रही है.
So maybe you've been even thinking, oh, shut up, Subhuti, just finish.
और आप ये भी सोच रहे हैं शायद कि बस अपना मुंह बंद करना, Subhuti अभी बस हो गया.
Don't worry, I will soon. Yeah.
तो चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी बोलना बंद कर.
But learn to love your reactions.
लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं से प्यार करना सीखिए.
I don't mean learn to love them and do them more.
तो ऐसा नहीं कि आप उनसे प्यार करो और उन्हीं को करते रहो बार बार.
But learn to see them as your opportunities.
लेकिन उन्हें अपने अवसरों के स्वरूप में देखना सीखिए.
They're opportunity for you to change the nature of your mind.
तो आपके मन का स्वभाव जो है उसे बदलने के लिए वो आपके अवसर है, इस तरह से आपने.
This is the essence of mind training.
और ये जो है मन के प्रशिक्षण का सार है.
It's not just done on retreat.
तो ये केवल शिविरों में ही नहीं होता है.
If it's just done on retreat, don't even bother to come on retreat.
और अगर ये सिर्फ शिविरों ही में ही होने वाली बात है तो फिर शिविरों में आने की चिंता भी मत कीजिए.
I don't really mean that. You know what I mean.
तो मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ, जरूरत नहीं है, आपको पता है कि मैं क्या कह रहा
हूँ. It's not just done when you're meditating.
या सिर्फ आप जब ध्यान कर रहे हो तभी वो होता है, ऐसा नहीं है.
It's done in the midst of life.
तो आपके जीवन के मध्य में इसे करना होता है.
And life gives us so much opportunity to practice.
और जीवन जो है हमें आचरण के बहुत सारे अवसर देता है, अभ्यास के बहुत सारे अवसर देता है.
We have so many good friends out there trying to cause us difficulties so that we can practice.
तो वहाँ पे हमारे बाहर बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो हमारे लिए अवसर निर्माण करते हैं कि हम अभ्यास कर सकें.
So to begin with, you probably find that you react, you shout, scream, or whatever,
तो उदाहरण के लिए आपको ऐसा ध्यान में आएगा कि आप प्रतिक्रिया देते हैं, आप चिल्लाते हैं।
So afterwards, when you've got some time to reflect, you think, oh good, there's a reaction, I can look at that.
और फिर जब आपको बैठने का मौका मिल जाता है, तब आप बैठते हैं और सोचते हैं कि हाँ, ये तो मेरी प्रतिक्रिया थी, और आप उसकी तरफ देख सकते हैं।
And you try to go down into that reaction to see what underlay it.
और फिर आप उस प्रतिक्रिया के एकदम मूल तक जाते हैं, तह तक जाते हैं, देखने के लिए कि क्या क्या था इसके पीछे।
And you try to see how you could have responded more creatively.
और फिर आप ये भी देखने का प्रयास करते हैं कि चलो, ये तो मैंने कर डाला, लेकिन किस वो क्या दूसरा तरीका था जिसके जो मैं कर सकता था, मैं और क्या कर सकता था इसके बजाय।
So study your own reactions.
तो अपनी स्वयं की प्रतिक्रियाओं का आप अभ्यास करो।
And see what's going on.
और देखिए कि क्या हो रहा है।
Sort of have a scientific look at your own reactions.
तो अपनी प्रतिक्रियाओं के तरफ एक वैज्ञानिक दृष्टिक्षेप डालिए।
And see how you can shift them.
और देखिए कि किस तरह से आप उनको बदल सकते हैं।
So I've given you the essence of the Dhamma.
तो मैंने आपको धम्म का एकदम सार दे दिया है।
Moment by moment, trying to change the direction of your mind.
तो क्षण दर क्षण आपके मन की दिशा को परिवर्तित करना।
Using any situation and especially the difficult situations as opportunities for practice.
तो किसी भी परिस्थिति को और विशेषता मुश्किल परिस्थिति को अपने अभ्यास के अवसर के रूप में देखते हुए।
So I'm very interested to hear what comes out in your discussion.
तो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगेगा, या मैं उत्सुक हूँ जानने के लिए कि आपकी चर्चाओं में क्या आता है, उनमें से क्या निकल कर आता है।
And I really hope that you've all sort of understood what I mean and can see how you can put it into effect.
तो मुझे वाकई आशा है कि आपने इस बात को देखा कि मेरा क्या अर्थ था, मैं आपको क्या बता रहा था।
But maybe in your discussion.
हाँ, कैसे आप उसको अपने अभ्यास में ला सकते हैं।
But maybe in your discussions you'll get deeper into it and relate to it more strongly and personally.
तो हो सकता है कि आपके चर्चाओं में आप उसको और भी गहराई से जान सको और अपने व्यक्तिगत स्तर पे आप उसको और भी करीब से देख सको।
And I can guarantee you that even some engagement with this point of view will very much change your experience of life.
और भले ही थोड़ी देर आप इस विषय में सोच के देखो कि इस दृष्टिकोण के बारे में, तो ये आप में बहुत ही अलग ऐसा बदलाव लेकर।
And it'll mean that the mood in our NNBY is even more positive and creative.
और इसका ये अर्थ होगा कि हमारा जो मूड होता है NNBY में, वो अधिक ज्यादा सकारात्मक और सृजक रहेगा।
Thank you very much. Namo Buddhaya. Jai Bhim.